ओम शांति। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय बीचों बीच एक पागलखाना था, और जब बंटवारे का समय आया तो उन पागलों से कहा गया कि तुम तो कहां जाना चाहते हो, चुन लो, भारत या पाकिस्तान, जो जहां जाना चाहता है बता दे। उन पागलों ने कहा हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं ठीक है। उनसे कहा गया ये तुम्हारी इच्छा का सवाल नहीं, राजनीतिक फैसला है, चुनना ही पड़ेगा, या तो हिंदुस्तान में जाओ या पाकिस्तान में, परंतु हां तुम रहोगे यहीं, क्योंकि बीज से दीवार होगी। आधा अस्पताल पाकिस्तान में होगा, आधा हिंदुस्तान में, तो तुम लोग सोच लो कहां जाना है। उन पागलों ने कहा यदि हम रहने यही बातें हैं तो फिर जाने का क्या सवाल है, फिर चुनने का क्या सवाल है। परंतु उनसे कहा कि नहीं, तुम लोगों को चुनना पड़ेगा, और फिर बीच में एक दीवार बना दी गई, तो आधे पागल हिंदुस्तान में गए और आधे पाकिस्तान में, उनमें से कुछ कुछ बीच बीच में दीवार पर कूदकर जो दूसरी तरफ पागल है उनसे बात भी करते हैं और कहते हैं पागल हम हैं या ये लोग, क्योंकि हम तो वही है जहां पहले थे, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ा, फिर भी अब तुम पाकिस्तान में हो और हम हिंदुस्तान में हैं। और वो हंसते हैं उन अधिकारियों की ओर कि जिन्होंने ऐसा बंटवारा किया, और सोचते हैं कि हमसे अधिक पागल तो ये लोग हैं। मनुष्य ने हर चीज का बंटवारा किया, धर्म ने भी बंटवारा किया, हर वाद ने बंटवारा किया, जाति ने, सभ्यता ने, जमीन ने बंटवारा किया, संस्कृति ने, कल्चर ने, सभ्यताओं ने बंटवारा किया, और ऐसे ही बंटवारे के खिलाफ एक आवाज 1960 के दशक में उठी थी, और वो आवाज ऐसी सशक्त थी क्योंकि वो युवाओं के द्वारा उठी थी। युवाओं का एक वर्ग तैयार हुआ और जिन्होंने कहा हमें बंटना नहीं है, और जिन्होंने कहा हम किसी भी रूढ़िवादिता को स्वीकार नहीं करते, और जिन्होंने कहा हम जो चाहे वो करेंगे, मुक्ताचरण, ऐसा पश्चिम जगत में अमेरिका की भूमि में एक आंदोलन चालू हुआ, और जो कि धीरे धीरे यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और विश्व भर में फैल गया। कौन सा आंदोलन था वो जिसकी चर्चा आज बाबा ने मुरली में की है? हिप्पी आंदोलन। बड़े बड़े बाल, जो मर्जी चाहे वो पहनना, सारे युवक एकत्र हो गए, विद्रोह किया अब तक की रूढ़िवादिता के खिलाफ, अस्वीकार कर दिया सभी तथाकथित बंधनों को, कोई बंदिशें नहीं हो, कोई बंटवारा नहीं हो, हम जो चाहे वो करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा ये मनुष्य जाति के इतिहास में, कि जिस आंदोलन में सारे युवा थे उनका लक्ष्य श्रेष्ठ था, परंतु उसमें कुछ कुछ गड़बड़ हो गई। लक्ष्य था सभी बंधनों से मुक्त होना, लक्ष्य था सहज जीवन हो, लक्ष्य था चेतना की सर्वोच्च अवस्थाओं का अनुभव करना, और उसके लिए एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए मादक द्रव्यों का, ड्रग्स का प्रयोग किया गया, LSD, मैरिजुआना, मुक्त विहार, उनका सिद्धांत था हम सारे विश्व से प्रेम करेंगे, परंतु वो प्रेम कब काम विकार में बदल गया और वो सारे युवा और उनकी वो फिलॉसफी और वो सिद्धांत कहां खो गए पता ही नहीं चला। कितने उसमें से मर गए और कितनों को असाध्य रोग हो गए और कितने एडिक्ट्स बन गए। उनका लक्ष्य था यौन क्रांति, उनका लक्ष्य था सामाजिक क्रांति, उनका लक्ष्य था कि एक नए समाज का निर्माण किया जाए, उनका लक्ष्य था शांति। वॉर नहीं चाहते थे वो, युद्ध नहीं चाहते थे वो युवक। नए म्यूजिक की खोज की, रॉक म्यूजिक, स्ट्रीट पर गलियों में गलियारों में आ गए, वहां गीत संगीत बजाने लगे, किसी की नहीं सुनते थे, अधिक मात्रा में ड्रग्स, घर बार को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, परंपराओं को छोड़ दिया, स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया, कुछ भी उन्हें स्वीकार नहीं था, हम जो चाहे जैसा चाहे जब चाहे वो करेंगे। और वो हिप्पी कल्चर देखते ही देखते सारे विश्व ने स्वीकार किया, भारत में भी लहर फैली, लंबे लंबे बाल, हाथ में कुछ संगीत का वाद्य, परंतु यह हिप्पी आंदोलन मनोविकृति का ही एक रूप था और इतिहास के पन्नों में खो गया। भगवान जब धरा पर आए, भगवान ने भी एक आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन भी शांति के लिए है, ये आंदोलन भी किसी भी परंपरा को, तथा कथित धर्मों को, सिद्धांतों को, मतों को मानता नहीं है, चोट की है हर अंधविश्वास पर। हिप्पियों की भी धारणा थी कि कोई अंधविश्वास पर हम नहीं मानते। उनका भी लक्ष्य था चेतना की हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस को अनुभव करे सब कुछ छोड़कर, और उसके लिए उन्होंने LSD और दूसरे ड्रग्स का प्रयोग किया, परंतु वो नशा, वो एक्सपेंशन नहीं हो पाया। नशे में धुत सड़क पर घूमते फिरते भगवान ने भी जब एक नए आंदोलन की शुरुआत की, उसमें भी एक नशा है, परंतु वो नशा उस नशे के जैसा नहीं है, एक शुद्धतम नशा, एक पवित्र नशा। उन्होंने भी प्रेम की ही स्थापना करने का प्रयास किया, परंतु उनका प्रेम कब काम विकार बन गया उन्हें भी नहीं पता चला। परमात्मा ने भी प्रेम के धर्म की स्थापना की। तो आज की मुरली में बाबा ने एक प्रश्न पूछा है एक जगह, बाप का हाथ छोड़ देते हैं उनको विदेश में क्या कहते हैं? एक परंपरा निकल पड़ी है, क्या बन जाते हैं? हिप्पी बन जाते हैं। तो बाप तुम्हें हिप्पी नहीं क्या बनाने आया है? एवर हैप्पी बनाने आया है। उनका क्या हाल होता है देख भी नहीं सकते, उनका क्या हाल होता है भगवान उवाच देख भी नहीं सकते। अभी भी कई लोग हैं जो बूढ़े हो गए और उस समय हिप्पी बने थे, क्योंकि लहर ही ऐसी चली थी विश्व में। क्यों हम किसी की माने, किसी धर्म गुरु की, किसी सिद्धांत की? हम अपना एक इंडिपेंडेंट जीवन जिएंगे, सबके सब उसके प्रभाव में आ गए थे, पागलों जैसे रस्तों में झूमते थे वो लोग। आज वो लोग कहते हैं कैसी हमसे भूल हो गई, कितने एडिक्ट बन गए और कितने मर गए। उसके लिए बाबा ने कहा क्या उनका हाल होता है, बता भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। ऐसी कई लहरें संसार में उठी है, ऐसे कई आंदोलन, न्यू एज मूवमेंट्स जिसको कहा जाता है, उठे और फिर खो गए। कोई भी चिरस्थाई नहीं हो पाया, लक्ष्य सभी के उत्तम थे परंतु खो गए। तो आज की मुरली में कौन आया है मिलने, कहां आया है, किससे मिलने आया है, किस लिए आया है, जो मिलने आया है वो कैसा है, जो जिनसे मिलने आया है वो कैसे है, और जो मिलने आए हैं वो क्यों मिलने आए हैं, यहां से मुरली की शुरुआत है। कहां से आया है, लक्ष्य क्या है, क्यों आया, कब आया, कहां आया, किस लिए आया, किसने मिलने आया, ये सारे प्रश्न है। सबसे पहले कौन आया, कौन आया, बाप का कौन सा रूप है आज, माशुक, साजन, प्रीतम, प्रियतम, बिलवेड, रूहानी माशुक आया है। कहां आया है, कहां आया है, सागर के कंठे पर आया है, मधुबन के कंठे पर आया है, रूहानी आशिकों की महफिल में आया है। किस लिए आया है, मिलन मनाने आया है, सुनाने नहीं आया है, मिलने आया है, मनाने आया है, सुनाने नहीं आया है। दो प्रेमियों का मिलन, मौन मिलन। दो प्रेमी मिलते हैं तो भाषण नहीं दिया जाता, खामोशी में मिलन होता है, आंखों से मिलन होता है, मौन गुफ्तगु, बेआवाज मिलन होता है। कहां से आया है, दूर दूर से मिलने आया है, बाबा ने कहा। किससे मिलने आया है, रूहानी आशिकों से मिलने आया है, विदेश के बच्चों से मिलने आया है। और ये माशुक कैसा है, कैसा है, वंडरफुल माशुक है। और ये माशुक कैसा है, एक माशुक है और उसके अनेक आशिक है। ऐसा ये माशुक, ऐसा ये प्रीतम, ऐसा ये शिव साजन, सीताओं से मिलने आया, राम आया है, शिव आया है, प्रियतमाओं से मिलने, लवर्स से मिलने। और जो मिलने आए हैं वो किस संकल्प से मिलने आए हैं, क्या कहा, किस संकल्प से मिलने आए हैं, नए वर्ष मनाने के संकल्प से मिलने आए हैं। तो मधुबन का कंठा है, बहुत दूर से वो आया है, वंडरफुल बाप, आशिकों से मिलने आया है, मनाने आया है। तो इस मुरली में जो भक्ति में गायन है, 16 श्रृंगार, साजन क्या करते हैं, सजनी का 16 श्रृंगार करते हैं। तो माशुक आशिकों का 16 श्रृंगार करने आया है। तो ऐसी 16 बातें, ऐसी 16 चीजें श्रृंगार बाबा ने इस मुरली में हम बच्चों का किया है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, वो आकर क्या क्या करता है, कौन कौन सी बातें बताइए, पहले आप बताएंगे पूरी मुरली में से क्या क्या बताया, उसके बाद में हम चालू करेंगे। तो बाबा ने आज क्या क्या किया बताओ। वरदानों की माला पहनाई, और क्या किया, माताएं बहने श्रीमद रूपी हाथ दिया, और क्या किया, स्मृति का तिलक लगाया, और क्या किया, साथ ले जाने आया, और क्या किया, हैप्पी एवर हैप्पी बनाने आया, और क्या किया, स्नेह और सहयोग का क्या, हाथ की बधाई, और एक है भाग्य का, एक है सुहाग का, एक है बधाई का, और भट्टी जब तुम लोग करते हो तब कौन सा लगाते हो, स्मृति का, ये चार, और बाप ने दो लगाए, एक फुल स्टॉप का, एक समर्थी स्वरूप का, तो छह हो गए, छह हो गए ना। और क्या किया बाबा ने आके आज, संतुष्टता क्या किया, संतुष्टता का वरदान, केवल संतुष्टता का दिया या आठ वरदान दिए हैं वहां पर माला में, सरल स्वभाव, वरदानों को छोड़कर और क्या क्या किया मुरली में, स्मृति से समर्थ, और क्या किया सारी मुरली में, सबने मुरली सुनी है सुबह, क्या किया माशुक ने आकर, क्या किया आशिकों को ढूंढा, और क्या किया, नवयुग सृष्टि का निर्माण, और क्या किया, नवयुग की बधाई, और क्या किया, नए संकल्प दिए, और क्या किया, बहनों के लिए क्या दिया विशेष, बहनों का क्या कर दिया, राखी, आज भाई बनकर नहीं माचुक बनकर आया है, क्या किया, पवित्रता, और बहनों का क्या किया, कुछ तो किया है, अच्छी बात, एक सगाई की, मैरिज सेरेमनी सेंटर पर रहने वाली बहनों के लिए कहा जाता है कि उनकी तीन बार शादी होती है जो सेंटर पर समर्पित रूप से रहती है। एक होता है लव मैरिज, सबसे पहले जब बाबा को पहचानती है और बाबा को अपना जीवन दे देती है। फिर उनका होता है अरेंज्ड मैरिज, समर्पण समारोह, और बाद में उनको फिर वो कार्ड मिलता है रजिस्टर्ड मैरिज पंजीकरण। तो ऐसी तीन मैरिजेस होती है बहनों की और भाइयों की तो लव मैरिज, अरेंज्ड मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज। तो बाबा ने, माशुक ने 16 श्रृंगार किए। पहला श्रृंगार, कॉन्ग्रेट्स, बधाई। माशुक ने क्या आके किया, बधाई दी, स्नेह की और सहयोग की बधाई, नवयुग की बधाई, नए जन्म की बधाई, नए दिन की, नई रात की, नए संबंध की, नए संसार की बधाई। आते ही क्या किया उसने, बधाई दी, कहा ना कि मैं सुनाने नहीं आ रहा हूं, मिलने आ रहा हूं, मनाने आ रहा हूं, सेलिब्रेशन के लिए आ रहा हूं, उत्सव मनाने के लिए आ रहा हूं, साजन सजनियों के साथ उत्सव मनाने आ रहा है। और वो भी किस जगह आ रहा है, सागर के कंठे पर, प्रेमियों का मिलन। आते ही क्या की उसने, बधाई दी, नवयुग, नवजीवन, नव संसार, नई दिन, नए दिन, नई रात, सब कुछ नया है तुम्हारा, पुराना सब कुछ छोड़ चुके हो, मुरली है 31 दिसंबर की, नववर्ष की। 83 समाप्त हो रहा है, 84 चालू हो रहा है। पुराना वर्ष, पुरानी बातें, पुराने रीति रस, पुराने संस्कार, पुरानी यादें, पुराने विकार, पुरानी ये देह, सब कुछ समाप्त। नवयुग, नव संसार, नव संसार, नव संबंध। तो सबसे पहला श्रृंगार कौन सा किया? बधाई का, कॉन्ग्रेट्स का। कोई मनुष्य नहीं कर रहा है आके कॉन्ग्रेट्स, भगवान स्वयं, भाग्य विधाता स्वयं कह रहा है कि तुमसे अधिक भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। दूसरा, दो गीत। साजन ने आकर दो गीत सुनाए, कौन से? नया दिन लागे और नई रात लागे, और दूसरा गीत जाग सजनिया जाग। पहले क्या कर रहे थे? सोए नहीं थे, बेहोश थे। कौन सी बेहोशी थी? मैं कौन हूं की बेहोशी थी। घना था अंधकार, भटक रहे थे, पता ही नहीं था ये कौन सी बेहोशी है, कैसी बेहोशी है। एक है अज्ञान की बेहोशी और दूसरी है ज्ञान में आने के बाद की बेहोशी, विस्मृति की बेहोशी, आलस की बेहोशी, अलबेलेपन की बेहोशी, गफलत की बेहोशी, भूल करने की बेहोशी, इलेक्ट्रॉनिक बेहोशी। बेहोश है चेतना। बोहिप्पी चाहते थे बहुत ऊंची अवस्था को पाए, कॉन्शियसनेस की वो कौन सी अवस्थाएं है, और उन्होंने मादक द्रव्यों का सेवन किया और उनको साइकेडेलिक वो ड्रग्स लेकर अनुभव होने लगे कुछ कुछ नए नए, जो उन्होंने साधारण अवस्था में कभी नहीं किए थे, और धीरे धीरे आदत बनती गई, एडिक्शन होता गया, बेचैनी तलब उठने लगी, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे और बहुत कुछ होने लगा। लक्ष्य ऊंचा था परंतु फंस गए, बंध गए, ट्रैप्ड हो गए। तो बाप आकर गीत सुनाते हैं। बाबा ने कहा अभी तो बहुत गीत बना दिए हैं। जाग सजनिया जाग, सजनियों को जगाने आया है। क्या मैं जागा हूं? स्वयं स्वयं से पूछना है पुरुषार्थ के प्रति। जागरण हुआ है क्या? निरंतर ये याद रहता है कि ये आबू पर्वत है, ये मधुबन है, ये संगम का समय है, ये समय बहुत कम रह गया है, तपस्या बहुत करनी है। निरंतर याद रहता है यहां रहते हुए विश्व की सेवा करनी है, महान कार्य करने हैं। अंदर का योगी कहीं भोगी तो नहीं बन गया? अंदर की तपस्या धधकती अग्नि की के समान है या फिर बुझती है और फिर चलती है? संपूर्ण पवित्रता धारण करने का समय है। जरा भी अपवित्रता ना हो, संकल्प में ना, भाव में ना, भावना में ना, वृत्ति में ना, दृष्टि में ना, संकल्प बोल कर्म स्वप्न, स्वप्न भी इतने शुद्ध, ऐसी निरामय चेतना, ऐसी निष्कलंक चेतना, ऐसा रजिस्टर जिसमें एक दाग तक ना हो, ऐसा बेदाग जीवन बनाए, या फिर बेहोशी में है, गफलत में है, व्यर्थ में है, परचिंतन में है, परदर्शन में है, वासनाओं की गिरफ्त में गिरफ्तार है। तो दूसरी चीज साजन क्या कर रहे हैं? गीत। नया दिन लागे, नई रात लागे, सब कुछ नया ही नया। ऐसी नवीनता संकल्पों में, ऐसी नवीनता बोल में और कर्म में, भाव में, भावना में है, या वही पूरा पुरानापन, बचपन, वही वही सब कुछ, ये दूसरी बात। तीसरी बात, संसार में कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, बाप क्या कहते हैं? हैप्पी न्यू युग, खुशी का युग है तुम्हारा, उनका है विनाशी, तुम्हारा है अविनाशी। सारा युग ही खुशी में बीत रहा है या दुख में, गम में। यदि जरा सा भी गम है, अर्थात एक जगह कहा है आगे, जरूर सूक्ष्म पाप हो रहा है। यदि जरा सी भी दुख की फीलिंग है किसी भी कारण से, अर्थात क्या है, जरूर सूक्ष्म पाप हो रहा है। देहभान में आना पाप है, क्योंकि बाप की याद वहां नहीं है। पाप का खाता तो भस्म करना है, पाप तो नीचे दब जाए और पुण्य ऊपर ऊंचे हो जाए। तो तीसरी बात, तीसरा जो श्रृंगार किया है वो है हैप्पी न्यू युग। चौथा हैंडशेक। चौथी कौन सी बात कर दी बाबा ने? आते ही हैंडशेक, हाथ मिलाया, हेलो आई एम योर फादर, आई एम योर बिलवेड, मुझे ही पुकारा था ना, अब मैं आया हूं। तुमने ही कहा था जब आओगे तब वारी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, अब मैं आ चुका हूं। मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा। कौन सा हाथ? श्रेष्ठ मत, श्रीमत का हाथ। सुंदर प्रश्न पूछा है विदेशियों का को बाबा ने, पकड़ना और छोड़ना ऐसा तो नहीं करते? और शायद इस प्रश्न के उत्तर में कईयों ने हाथ उठाए और बाबा ने और एक बात कह दी उनको उसके लिए। कौन सी? जो सच्चे है उनका आधे विघन समाप्त, माफ। उठाया तो सही कि बाबा निरंतर हम हाथ पकड़ के नहीं चल रहे, पकड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं, कभी पकड़ा कभी छोड़ा, कभी किया अमृत वेला कभी मिस, कभी साधारण कभी व्यर्थ कभी लेट, कभी मुरली का चिंतन किया कभी किया कभी नहीं किया, कभी उसकी याद में भोजन खाया कभी नहीं खाया, कर्मों में वो भूल गया, पाप हो गए सूक्ष्म। नुमाशाम कब किया कब छोड़ दिया, रात को थक गए थे बहुत और लेट गए, तुम भले भूल जाओ पर बाप तुमको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करना नहीं भूलता। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, स्थिति को श्रेष्ठ नहीं बनाया ये अपराध किया। ब्राह्मण बनने के बाद चेतना को उस ऊंचे शिखर पर नहीं ले गए, अपराध है तुम्हारा। तो हैंडशेक, चौथा क्या है? हाथ मिलाना और कभी छोड़ना नहीं। सहयोग के लिए भी हाथ पकड़ा जाता है अगर कोई गिर जाए तो, अगर गिर भी गए हैं श्रीमत से, यदि जीवन से और उच्च मत से गिर भी गए हैं, रजिस्टर पर कोई दाग भी अगर लगा है, अगर ऐसी भूले कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी, ब्राह्मण जीवन में ऐसे अपवित्रता के कलंक भी यदि लगे हैं तो भी बाप कहते हैं फिर से पकड़ो, अब पकड़ लो इस संकल्प के साथ कि अब नहीं छोड़ेंगे। बाप तो कभी नहीं छोड़ते, तुम ही छोड़ देते हो उसको। पांचवा, दो बिंदी। कौन सी वो दो बिंदी है? फुल स्टॉप की बिंदी और समर्थ स्वरूप की बिंदी। ऐसी अविनाशी बिंदी लगाओ कि अब तक जो भी कुछ हुआ, दृढ़ संकल्प करो स्टॉप, अब इसको रिपीट नहीं करते रहेंगे, अब इसका वर्णन नहीं करते रहेंगे, अब इसको मन ही मन रिवाइज नहीं करते रहेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग और प्रगाढ़ नहीं करेंगे, कुटिल संस्कारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे। जिन संस्कारों ने धोखा दिया ऐसे धोखेबाज संस्कार, धोखा धड़ी करने वाले संस्कार ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, किसने मुझे धोखा दिया, कौन सा वो सूक्ष्म गुप्त संस्कार है जो अब तक भी चल रहा है और पता नहीं कब निकल कर उभर कर बाहर आता है और गिरा देता है, और फिर मैं दुखी, उदास, आंसू बहने लगते हैं। उस दिन कहां था बाबा ने, मम्मा चली गई, अब तुम्हारी बारी है, चिंता मत करो जाने की। तो दो बिंदिया बाबा ने संसार के कुछ उदाहरण दिए, भाग्य का कि बिंदी, सुहाग, राज्य, या फिर जब तुम भट्टी करते हो तब क्या करते हो, बिंदी लगाते हो। आज के मुरली में बाबा ने गोवर्धन पर्वत को याद किया है वरदान में। गोवर्धन प्रतीक है 7 दिन की भट्टी का, 7 दिन और 7 रात तक बारिश चालू थी, और गोपिकाएं किसके साथ थी, भगवान के साथ, गोपी वल्लभ के साथ, उस पर्वत के नीचे, बाहर आंधी तूफान और अखंड तपस्या भट्टी, वो प्रतीक है भट्टी का, उसके साथ रहने का। तो बिंदी लगानी है, जो हुआ सो हुआ, स्टॉप, अब उसका चिंतन नहीं करेंगे। छठवां, मैरिज सेरेमनी। बाप किस लिए आए हैं, मैरिज सेरेमनी करने। रोज अमृत वेला बाबा से क्या करना है, विवाह, सुबह सुबह शादी, और पतिव्रता नारी के धर्म कठोर है, स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं, ऐसी पतिव्रता नारी आत्मा बने, एक से विवाह हो गया है, एक ही पुरुष है, उसके अतिरिक्त संसार में अब कोई पुरुष ही नहीं, वही एकमात्र है सब कुछ, सर्वस्व सर्वे सर्वा। उसी की अर्धांगिनी बनकर रहना, उसी का सिंदूर और उसी का मंगल सूत्र, उसी का हाथ और उसी का साथ, और एक के प्रति ही समर्पण। तो छठवीं बात है मैरिज सेरेमनी। सातवीं, एवर हैप्पी। हिप्पी नहीं, छोड़ोगे तो हिप्पी बनोगे, जो भटकते फिरे बाद में उनको कोई ठिकाना नहीं मिला, क्योंकि वो कोई वाद नहीं था, सब वादों के विरुद्ध खड़ा हुआ एक आंदोलन था, कोई लीडर नहीं था उनका, एक विचारधारा थी मुक्त विहार की, बिना किसी अंकुश के निरंकुश जीवन की, पर खो गई। आठवां, वायदा। कौन सा वायदा, साथ ले जाने का वायदा। माशुक क्या करने आया है, साथ ले जाने का वायदा, चाहे कितने भी नटखट हो, नखरे करो, नाच नखरे, परंतु वो ले जाएगा। तुम मानो या ना मानो, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी मर्जी हो या ना मर्जी, तुम सबके शरीरों को जलाकर मैं आत्माओं को ले जाने आया हूं, साकार महावाक्य है बाबा के। भक्ति मार्ग में तुमने कभी सोचा था तुमने किसको बुलाया है, महाकाल को बुलाया है, अपनी मृत्यु का आह्वान किया है तुमने, अभी पता चला। तुमने महामृत्यु को बुलाया है, महाकाल का आह्वान किया है, अब मैं आया हूं, तैयार हो जाओ। तो आठवां है उसका वादा। हम वादा भूल सकते हैं, वो अपना वादा नहीं भूलेगा। नौवां नवीनता, भारतवासियों के लिए नवीनता। जो जागे और फिर सो गए, अब उनको क्या करो? ठंडा ठंडा पानी। आज सारे दिन भर विश्व भर की बहनों ने यही काम किया है, जा जाकर क्या किया? ठंडा पानी तो डाला ही होगा, राखी बांधते बांधते पानी भी डाल के आई, ताकि जो आए और फिर चले गए और जो अच्छा अच्छा कहते हैं और फिर सो जाते हैं, उनको अच्छे ठंडे पानी की आवश्यकता है, अच्छे छींटों की आवश्यकता है। जो दुखी है, तड़प रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ऐसे जेल में रहने वाले, जेल के कैदी, बहुत राहत मिलती है उनको जब राखी बंधी जाती है। तो बेचारे पश्चाताप ही कर रहे हैं उसमें, वो कोई बुरे लोग नहीं थे, परंतु आवेग ऐसा था विकार का कि उस क्षण उनसे वो चीज हो गई और अब संपूर्ण जीवन पश्चाताप में गुजर रहा है। छूटने का इंतजार, नवजीवन की शुरुआत का इंतजार। तो नौवा क्या है? नवीनता, राजनेता या धर्मगुरु या जो भी छोड़कर चले गए। दसवां विदेश में नवीनता, ये था भारत के लिए नवीनता। विदेशियों से बाबा मिल रहे, विदेश के लिए नवीनता। तीन बातें यहां पर बताई, एक तो झंडा लहराना, दूसरा लहर फैलाना और तीसरा एक ग्रुप का निर्माण करना। पहला झंडा, जहां जहां हलचल है वहां क्या करो? खुशी और अचल स्थिति का झंडा लहराओ। उनको लगे ये कौन गुप्त प्रभु रतन है, ये कौन गुप्त वेशधारी है, हमारे देश से न्यारे और प्यारे है। ये पहला काम करो विदेश में, विदेश के भाई बहनों से बाबा कह रहे। दूसरा काम करो जो गरीब है, उनको यह ज्ञान धन दो, तो क्या लगेगा उनको कि हम भी भरपूर है, हम भी पद्मा पद्म पति है। उनकी वो गरीबी दूर करो, सूक्ष्म धन स्थूल धन को खींचेगा। सूक्ष्म राज बाबा ने यहां खोल दिया है, तुम्हें उस स्थूल धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जिसके पास सूक्ष्म धन अधिक है, ज्ञान का प्रकाश जहां है वहां अंधकार नहीं आ सकता, और वो स्थूल धन पीछे पीछे आ जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अभी जिसने ज्ञान रत्नों से अपने को भरा सतयुग त्रेता में, उसी अनुपात में धन होगा। द्वापर कलयुग में जन्म ही ऐसे घर में होगा कि वहां उस तरह की नौकरी संसार वाले जैसे करते हैं करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जन्म ही ऐसे घर में होगा जहां संपन्नता है, भागदौड़ नहीं होगी वहां पर। तो स्थूल धन की प्राप्ति का आधार है स्थूल सूक्ष्म धन को एकत्र करना, सूक्ष्म धन को अपने अंदर भर देना, और वो काम रोज करना है। मुरली से, मुरली का एक एक वाक्य अनमोल है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता, कुछ भी त्यज्य नहीं है। ये एक ऐसा फल है मुरली कि जिसमें कोई छिलका ही नहीं है, किसको छोड़े? बीज भी नहीं है इसमें, किसको फेंक दे? पूरा ही खाना है, कुछ भी उसमें व्यर्थ नहीं, वेस्ट नहीं, छोड़ने जैसा नहीं। कि ये लाइन हम छोड़ देते, ये स्लोगन तो बहुत ही छोटा है, इसका क्या चिंतन करना? रोज तो सुनते हैं स्लोगन, जगह जगह पर लिखे हुए हैं, सुनते तो है, लिखे तो हुए हैं, मनन कितना किया, अंदर कितना समाया, रग रग में रक्त की तरह बहे यह ज्ञान। तो दूसरा काम विदेशियों को करना है, लहर फैलाओ। तीसरा, एक ग्रुप का निर्माण करो। कौन सा ग्रुप है वो? वारिस क्वालिटी सेवाधारी ग्रुप, जो भारत में जाए और भारतीयों को जगाए। भारत में कुंभकर्ण सोए पड़े हैं, भारत के कुंभकर्णों को कौन जगाएगा? विदेशी। क्या कहेंगे? उठो, तुम्हारे देश में भगवान आया है। क्या कहेंगे? उठो, तुम्हारे देश में भगवान आया है। हमें कौन बताएगा? वो लोग बताएंगे। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, सत्य के प्रयोग में, जब विदेश गए और वहां पर लोगों को देखा गीता का अध्ययन कर रहे, तब मुझे लज्जा आई कि मैं भारत में जन्म लिया मैंने और मुझे गीता की कोई बात पता नहीं, और ये लोग विदेश के लोग बैठ के, स्टडी सर्कल है उनका, और वहां पर गीता की ये लोग स्टडी करते हैं, बाइबल की स्टडी करते हैं। लज्जा आई मुझे, और मैंने उनसे कहा कि मुझे भी ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा आ जाओ, हम तुमको सिखाएंगे। तो वो लोग क्या कहेंगे? उठो, वहां के ब्राह्मण यहां के ब्राह्मणों को क्या कहेंगे? अब ये दूसरी बात बताओ, वहां के ब्राह्मण यहां के ब्राह्मणों को क्या कहेंगे? एक तो वहां के ब्राह्मण यहां के अज्ञानियों को कहेंगे, वहां के ज्ञानी यहां के ज्ञानियों को क्या कहेंगे? कहेंगे जागो, समय बहुत कम है, क्या करना है और कर क्या रहे हो तुम? कैसी तपस्या का समय है और कहां गफलत में डूबे हुए हो? तो ये तीन बातें, दसवीं पॉइंट। ग्यारहवीं, फिर से भारतवासियों के लिए, वो आत्माएं, उनके लिए बाबा ने फिर से एक दूसरा निर्देश दिया है। अनुभव के आधार पर भारत वाले सुनेंगे। भारत वालों को कहानियां ज्यादा पसंद है, किससे कहानियां, तो कैसे सुनेंगे वो? ऐसी अनुभव की बातें बताओ और ऐसे अपने परिवर्तन की शक्तिशाली बातें बताओ कि वो परिवर्तन हो जाएंगे। उनको बताओ हम क्या थे और हम क्या बन गए, किस कल्चर में जन्म लिया, किस धर्म में हमने जन्म लिया था, कहां डूबे हुए थे विकारों में और ड्रग्स में, और अब क्या बन गए। ऐसी बातें जब भारतीय सुनेंगे तब कहीं जाके उनका परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। भारत वालों को स्ट्रांग पॉइंट्स चाहिए रहती है परिवर्तन के लिए, शक्तिशाली बातें। ऐसी परिवर्तन की बातें उनको सुनाओ, अर्थात अपने अनुभव उनको सुनाओ। अपने अनुभव से ही हम दूसरों को परिवर्तन कर सकते हैं। ज्ञान वो सुनना नहीं चाहते, ज्ञान उनके पास बहुत है, सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, सारी किताबें ऑनलाइन, सब कुछ है, क्लासेस ऑनलाइन सब है, परंतु फिर भी तो वो परिवर्तन नहीं होते। परिवर्तन के लिए शॉक की आवश्यकता होती है, झटका। ऐसा झटका घाव हो जाए चेतना पर, धक से जाग जाए आत्मा, ये मैं क्या कर रही हूं, मुझे करना क्या है। और जब तक शॉक नहीं दिया जाएगा तब तक परिवर्तन नहीं होगी। प्रेम से सहयोगी तो बन जाएगी, परंतु बीच में एक शॉक चाहिए, शॉक की आवश्यकता है। बारहवा, वरदान माला। माशुक ने क्या आके पहना दी? वो माशुक क्या पहनाता है? वरमाला। ये माशुक क्या पहनाता है? वरदान माला। आठ वरदान दिए हैं, बताओ कौन कौन से? संतुष्ट रहना और करना, दूसरा सरल स्वभाव, अच्छा बीच में है, सरल स्वभाव, सरल बोल, सरल स्वरूप, तीसरा सदा एक रस, एक की याद, एक से सर्व प्राप्ति, एक से सर्व संबंध, अगला खुशी से भरपूर रहना, खुशी का खजाना बांटना, लहर फैलाना। अगला उड़ने का पुण्य, पुण्य आगे है, पुण्य यानी है। कौन सा वरदान दिया? जिनको वरदान मिल रहे हैं कम से कम वरदान तो याद रखने हैं। और कौन सा वरदान दिया? विशेष आत्मा, विशेषता से भरपूर आत्मा, संपन्न आत्मा। विशेष आत्मा का, संपन्न आत्मा का, संतुष्ट आत्मा का, खुशी का और खुशी की मुस्कुराहट, एक दूसरा है। वृद्धि का, याद में रहने का, आठ वरदान दिए हैं टोटल। एक भी वरदान यदि याद किया गया कि बाबा ने ये वरदान दिया है, मुझे संतुष्ट रहना है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, परंतु वरदान के रूप में मिला है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं क्योंकि वरदान है। तो वरदान के रूप में स्वीकार करना। दिखाया है छोटा सा शंकराचार्य निकल पड़ता है अपने गुरु को ढूंढने, मिलता है गुरु, पर गुरु तो समाधि मग्न है, तीन दिन तीन रात वही बैठा रहता है। गुरु आंख खोलते हैं और कहते हैं कि शंकर तू आ गया, और बस उसके सिर पर हाथ रख देते हैं, सारी शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती है। कोई प्रयास नहीं करता है शक्तियों को पाने का, अष्ट शक्तियां उसे मिल जाती है। भगवान के सामने बैठ जाना, और उसने हाथ रखा है, जो संस्कार नहीं छूट रहा है, जिस चीज का एडिक्शन हो गया है, जो ऐसी कमजोरी है, सब कुछ कर लिया, सबसे राय ले ली, बहुत सोचा, बहुत पुरुषार्थ किया, प्लानिंग की, फिर भी नहीं जा रही है, तो क्या करना है? अब वरदान ले लेना उससे, और एक बात बाबा से कहना, जब तक तुम मुझे इस कमजोरी से नहीं छुड़ाते, मैं जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। हट, ब्राह्मण हट, देना ही पड़ेगा, छुड़ाना ही पड़ेगा, जब तक मेरे अंदर का अहंकार समाप्त नहीं होता, मैं नहीं हटूंगा। ऐसे जिद करना, उसको पसंद है, उसने खुद कहा है करो। तो ये बात हो गई बारहवीं। उसके बाद है 13th पॉइंट, पुण्य आत्मा भव। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य को बढ़ाओ। जो अभी यहां पुण्यवान है वही पूज्य होगा, अविनाशी। संसार में थोड़ा भी पुण्य करते हैं कोई तो कितना अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है संसार का? सबसे बड़ा पुण्य ज्ञान का क्या करना? आत्माओं को ज्ञान से बाप का बनाना सबसे बड़ी सेवा है। ये किसी को राह बताना, किसी भटके को ठिकाना दे देना। और सारे ब्राह्मण तो बहुत जी जान से ये सेवा करते हैं, जो भी नई आत्माएं उनको ज्ञान सुनाने की, उन्हें बाप का बनाने की, उन्हें योगी बनाने की। तो ऐसी ये 13 बातें और 3 बाकी है। तो सभी एक क्रस होके, अलर्ट होके बाबा के सामने बैठेंगे, सूक्ष्म वतन में बाबा माशुक के रूप में सम्मुख है, और उससे कहना कि मैं उठूंगा नहीं। ब्राह्मणों के सूक्ष्म पापों की एक लिस्ट है 108 की, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं बाद में। ब्राह्मणों के 108 सूक्ष्म पाप कौन कौन से है? तो ये थी 13वीं पॉइंट। फिर उसके बाद में 14वीं, यहाँ पर बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात बताई है विदाई के समय, स्व के लिए प्लानिंग और उसको प्रैक्टिकल में लाना और दूसरों के लिए हमारा जीवन प्रेरणा बन जाए, ये बधाई बाप दादा देते हैं। स्व के पुरुषार्थ के लिए प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और दूसरों के लिए हमारा जीवन क्या बन जाए, प्रेरणा। ऐसा कुछ करना है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग बनानी है जिससे अंदर खुशी रहे कि हम वो कर रहे हैं जो बाबा चाहते हैं, तो उसकी मदद मिलेगी। तो ये हो गई 14वीं बात। उसके बाद में 15वीं वरदान से, क्या था वरदान? उंगली से क्या हो गया? गोवर्धन उठ गया। तो सहयोग की निशानी है, साथ की निशानी है, सेवा की निशानी है। भक्ति मार्ग में जो कुछ किया तन मन धन से, सब कुछ क्या हुआ? वेस्ट 99%। 1% को अब क्या करो? ईश्वरीय सेवा में लगाओ। कैसे लगाओ? सच्ची दिल से लगाओ। ये कार्य करना है। उसके बाद में कितने हो गए? 15 या 16वां लास्ट स्लोगन क्या था? निर्माण बनने की युक्ति क्या है? सबको मान देना। तो ये ऐसी टोटल शुरुआत से लेकर तो लास्ट तक 16 बातें बाबा ने आज की मुरली में बताई। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। माशुक आया है किस लिए? सबसे पहले क्या करता है? बधाई देता है। किस बात की? स्नेह सहयोग की, नवजीवन की। दूसरा क्या करता है? गीत गाता है, 2 गीत। तीसरा बिंदी लगाता है। तीसरा क्या करता है? हैप्पी न्यू ईयर। चौथा हैंडशेक करता है, अर्थात श्रीमत का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। कौन से वो कारण है, कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो फैक्टर्स ट्रिगर्स है कि जिस समय मैं श्रीमत को छोड़ देता हूं, उसकी व्यक्तिगत एक लिस्ट बनानी है। मैं मजबूर हो जाता हूं, परवश हो जाता हूं, ग्रहचारी बैठ जाती है, न चाहते हुए भी हो जाता है और फिर पश्चाताप, वो कौन सी बातें हैं। उसके बाद में 5वां बिंदी, समर्थ स्वरूप की बिंदी और फुल स्टॉप की बिंदी लगानी है। कब तक उसी को ढोते रहोगे जो पास्ट है, जो अतीत है, जो खो चुका, जो समाप्त हो चुका, जिसका अभी कुछ नहीं कर सकते, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। 6वां मैरिज सेरेमनी, उसके साथ विवाह रचाना सुबह सुबह अमृत वेले। देखना विवाह हो रहा है, मंडप, पंडित जी, अग्नि, 7 फेरे, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ देखना मन की आंखों से कि विवाह हो रहा है, अलौकिक विवाह, श्रेष्ठ विवाह। 8 प्रकार के विवाह है, उसमें से ये जो विवाह है सबसे बड़ा। भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ये हमारा जो विवाह है सबसे श्रेष्ठ विवाह है। उसके बाद 7वां एवर हैप्पी, हिप्पी नहीं बन जाना, बाप को छोड़ना अर्थात हिप्पी बनना। 8वां वादा, वो उसका वादा निभाने में अटल है तो हम भी अपना वादा निभा के रहेंगे। 9वां सेवा, क्या करना है? छींटे ठंडा पानी डालना जो सोए है, और जो ब्राह्मण बेहोशी में उनका क्या करेंगे, उनके पर कौन सा पानी डालेंगे? उनके लिए तो सुपर ठंडा पानी लाना पड़ेगा, केवल ठंडे पानी से नहीं जागेंगे वो, फ्रोजन आइस में बिठाना पड़ेगा तब जागेंगे। उसके बाद दसवां, विदेश में तीन प्रकार की सेवा, कौन सी सेवा? एक तो जो हलचल में है उन्हें अचल करना, गुप्त प्रभु रतन है, गुप्त वेशधारी न्यारे और प्यारे ऐसा अनुभव कराना। दूसरा जो गरीब है, पैसे नहीं है जिनके पास, उनको क्या कर देना? ज्ञान धन से समृद्ध बना देना, मालामाल कर देना, खुशी हो जाएगी उनको। और सूक्ष्म धन ज्ञान का अपने अंदर भरना है तो स्थूल धन स्वतः पीछे पीछे आएगा, चरणों में आके धन गिर जाएगा। हम कहेंगे नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी किसकी इस चरणों में दिखाई है? नारायण। तो जहां नारायण होगा, भक्ति मार्ग में कहते हैं जिसके हृदय में नारायण है, भक्ति चरणों, लक्ष्मी चरणों में है। तो भगवान जिसके हृदय में है, ज्ञान के रतन जहां पर है, स्थूल रतन भी अपने आप आ जाएंगे। तीसरा, एक पावरफुल ग्रुप बनाओ जो भारत के कुंभकर्णों को जाकर जगाए, ऐसा बाबा विदेशियों से कह रहे। और फिर भारत के लिए और एक सेवा, कौन सी? अनुभव के आधार पर सेवा करना। अनुभव में ये बताना कि हम पहले ऐसे थे, बाबा के बने ऐसा परिवर्तन हो गया और अब हम ये हैं, तो सामने वाले को तीर लग जाएगा। पर उस बात से वर्तमान में हम पूर्ण तरह मुक्त हो, नहीं तो ऐसा नहीं कि हम बताएं कि हम पहले करते थे और अभी भी चालू है करना, तो हमें, हमारे में वो पल बल नहीं होगा, वो शक्ति नहीं होगी। हम दूसरों को किस मुंह से सुनाएंगे कि पहले हम 8 बजे तक सोते थे, अभी हम एकदम शक्तिशाली, हम जल्दी उठ जाते हैं, पर आज सुबह ही अमृत वेला लेट हुआ था 10 मिनट। हमारी अपनी धारणाएं ऐसी मजबूत हो तभी हमारे वाणी में बल होगा, नहीं तो खो जाएगी वो। 11वां 12वां 8 वरदान 13वां पुण्यात्मा 14वां स्व के लिए प्रेरणा, स्व के लिए प्लानिंग और प्रैक्टिकल, और दूसरों के लिए हमारा जीवन प्रेरणा। उसके बाद में वरदान गोवर्धन, और लास्ट निर्माण बन जाना। विधि क्या है? दूसरों को मान देना, ऐसे वरदानीय आत्माओं को, ऐसे विशेष आत्माओं को, ऐसे हाथ में साथ के, हाथ में साथ के क्या, हाथ में साथ के कौन सी आत्माएं? अमर श्रेष्ठ आत्माओं को ऐसे हर संकल्प में नवीनता की विशेषता लाने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।